हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनंत ने थोड़ा हिचकिचाकर राविया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी पीठ पर बहुत गहरी चोटों के निशान हैं, तुम्हें ऑइंटमेंट लगानी चाहिए थी, वरना ये निशान कभी जाएंगे नहीं। इतना बोलकर जैसे ही उसने आहिस्ता से राविया की पीठ पर हाथ रखा, राविया सिहरते हुए बुरी तरह खुद में सिमट गई। फिर हड़बड़ाकर अनंत की तरफ अपना चेहरा करते हुए बोली, वह ये सब ना, मैं गिर गई थी, तब मुझे चोट लगी थी, मैं देख लूंगी इसका, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी चोट है, निशान भी चला जाएगा। अनंत ने अपने बढ़े हुए हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कहा, मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ। ये सुनकर राविया ने धीरे से नहीं में सिर हिलाया, तो अनंत ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़ते हुए कहा, देखो राविया, हम दोनों पति पत्नी हैं और मेरा तुम पर हक है, और वैसे भी कौन सा मैं तुम्हें खुद के साथ फिजिकल होने के लिए बोल रहा हूँ, बस ऑइंटमेंट लगाऊंगा, और मुझे पता है ये निशान गिरने की वजह से नहीं है, इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं, मुझे सब दिखाई देता है। राविया ने कपटी पलकों को उठाकर अनंत के चेहरे को देखा, उसे ये घाव उसके अपनों ने दिए थे, तो वो किसी गैर से इसकी मरहम कैसे लगवा सकती थी, ऊपर से उम्मीद की कैसे कर सकती थी कि कोई गैर जाकर उसकी इस कदर ख्याल रखेगा। अनंत ने पहले जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद किया और फिर राविया को बेड पर बैठे हुए रोज़ से ऑइंटमेंट लेकर आया। उसके बाद उसने राविया के पीछे बेड पर बैठते हुए कहा, अपने बाल आगे की तरफ करो और साड़ी का पल्लू भी निकालो। राविया ने शर्म से लाल होते चेहरे को अपने दोनों हाथों से छुपाते हुए कहा, प्लीज़, मैं ये सब नहीं करवा सकती हूँ, मैं भाभी से करवा लूँगी, तुम रहने दो। अनंत ने गहरी सांस ली और फिर खुद ही आगे बढ़कर राविया के बालों को आगे की तरफ किया। अनंत की उंगलियों को अपनी खुली पीठ पर महसूस कर राविया की आंखें बंद हो चुकी थीं। उसकी गर्दन की नसें तनी हुई थीं और उसकी सांसें रुक चुकी थीं। वो बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भरते हुए खुद के एहसास को काबू करने की कोशिश कर रही थी। वहीं वो जिस तरफ बैठी थी, ठीक उसके सामने ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था, जिसके मिरर में उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अनंत साफ साफ देख सकता था। उसने ब्लाउज की डोरी खोलते हुए धीरे से कहा, इतना मत घबराओ धर्मपत्नी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा मेरा कोई इरादा नहीं है, तो अपनी ये शर्म उस वक्त के लिए बचाकर रखो जिस वक्त असलियत में वो होगा, जिनका ख्याल फिलहाल तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है। राविया ने जल्दी से अपनी आंखें खोलते हुए कहा, क्या बेशरम वाली बातें कर रहे हो, मेरे दिमाग में कोई ख्याल नहीं घूम रहा है। इतना बोलकर राविया ने अपने होंठ भींच लिए, जिसके साथ ही अनंत के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने राविया की साड़ी के पल्लू को पीछे से निकालते हुए उसे आगे की तरफ कर दिया और फिर अपने हाथ में ऑइंटमेंट लेते हुए उसे धीरे से राविया की पीठ पर लगाना शुरू किया, जिसके साथ ही राविया सिहरते हुए बिल्कुल सीधी हो गई। ऐसा ही हाल कुछ अनंत का था, उसकी बॉडी में भी अजीब सी अकड़न आ रही थी राविया को छूने की वजह से, इसलिए उसने दोनों का ही ध्यान भटकाने के लिए मजाकिया लहजे में कहा, तुम्हें पता है अस्पताल में मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज होने वाली थी सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये सुनकर राविया की आंखों में हैरानी आ गई और वो इस ख्याल को दूर दूर तक भूल चुकी थी कि अनंत उसकी खुली पीठ पर अपनी उंगलियों से उसे छू रहा है। वो जल्दी से बोली, क्या बकवास कर रहे हो, मेरी वजह से तुम्हारे खिलाफ कौन सी कंप्लेंट दर्ज होने वाली थी। अनंत ने उसकी पीठ पर हल्के हल्के फूंक मारते हुए ऑइंटमेंट लगाकर कहा, जिस डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज किया था उसने तुम्हारे शरीर पर ये घाव देखे थे, ऊपर से तुमने दो दिन से खाना भी नहीं खाया था, इस वजह से उसे लगा कि मैं तुम्हारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता हूँ, क्योंकि वेदांत ने उसे बोल दिया था कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तो उसने कहा मैं पुलिस को बुलवाऊंगी, मेरे जैसे इंसान ढोंगी होते हैं पति के नाम पर। ये सुनकर राविया को हंसी आ गई, उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा, तुमको क्या लगा था मेरा पति बनकर तुम्हें कोई इनाम मिलने वाला है, मेरे साथ नाम जुड़ने के बाद किसी के साथ अच्छा नहीं हुआ है, जब मैं पैदा हुई तो मेरी मम्मी मर गई, और तुम्हें पता है जब मेरा आधार कार्ड बना था तब उसमें पापा ने पहली बार मुझे अपनी बेटी का दर्जा दिया था, और उसी दिन पापा का एक्सीडेंट हो गया, मतलब जिस दिन मेरा नाम उनके साथ जुड़ गया उसी दिन वो इस दुनिया से चले गए, उसके बाद मैंने कभी किसी से रिश्ता नहीं बनाया, अगर कोई गलती से भी मुझे दीदी बोल देता है तो मैं उसे डांट टपट कर बोलती हूँ कि मेरे साथ रिश्ता मत बनाओ, लोगों को लगता है कि मैं उनके सामने छोटी बनना चाहती हूँ, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता किसी का दीदी बुलाना। असलियत ये है कि जब मैं किसी से रिश्ता जोड़ती हूँ तो वो इंसान मुसीबत में पड़ जाता है। अब तो मुझे अनजान लोगों से बात करने में भी डर लगता है। पता नहीं कब मेरी मनहूसियत किसी मासूम पर हावी हो जाए। पर देखो, तुम्हारे आते ही मैं कितनी सेल्फिश बन गई। तुम्हारे साथ सीधा पत्नी वाला रिश्ता जोड़ लिया, बिना ये सोचे कि तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने से तुम्हारे साथ बुरा होना शुरू हो जाएगा। अनंत ने गंदा सा चेहरा बनाते हुए कहा, ये क्या बकवास है? तुम्हें मेरी पत्नी बने हुए आज दूसरा दिन है और देखो, मैं सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है। राविया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी अपनी माँ तुम्हें ताने मार रही थी। अस्पताल में खामखा डॉक्टर ने तुम्हें डांट दिया। तुम्हारी चाची तुम्हें अजीब नज़रों से देखती हैं। तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है और अगर तुम मेरे नाम से कुछ शुरू करोगे तो ज़रूर इसमें घोटाला हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ तुम अपने नाम से ही सब कुछ करो। अनंत ने आखिरी जगह ऑइंटमेंट लगाकर ट्यूब को बंद करते हुए गुस्से में कहा, अब तो मैं तुम्हारे नाम से कंपनी खोलूंगा। मैं भी देखता हूँ कितना नुकसान होता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग से ये अंधविश्वास की पट्टी हटाना ज़रूरी है। तुम मनहूस नहीं हो, वो सब कुछ संयोग से हुआ है, या फिर हो सकता है किसी ने प्लान किया हो। तुम्हें सारा इल्ज़ाम खुद पर लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम कुदरत के लिए इतनी भी मायने नहीं रखती हो जितना तुमने खुद को बना रखा है कि हर चीज़ तुम्हारी वजह से होगी। राविया ने हैरानी से अनंत को देखा। उसे लगा था कि अनंत उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा और उसे कहेगा कि वो जल्द से जल्द उससे पीछा छुड़ा लेगा, पर यहाँ तो अनंत यूँ मानने को ही तैयार नहीं था कि वो मनहूस है। अनंत ने सामने की तरफ आकर जैसे ही राविया को देखा, उसकी आंखें उसकी क्लीवेज पर जाकर अटक गईं। साड़ी का पल्लू गिरने से उसका डीप नेक ब्लाउज काफी हद तक उसके खुले हिस्से को रिवील कर रहा था। अनंत ने अपनी गर्दन पर हाथ रखकर अपनी नजरें इधर उधर फिराते हुए कहा, तुम्हारी साड़ी ठीक कर लो, मैं हाथ धोकर आता हूँ। ऑइंटमेंट की स्मेल आ रही है मेरे हाथों से। इतना बोलकर अनंत तेज कदमों से चलता हुआ बाथरूम में चला गया। वहीं राविया ने भी हड़बड़ाकर अपनी हालत देखी और शर्म से अपना निचला होंठ चबाते हुए अपने मन में सोचा, कितनी लापरवाह हूँ मैं, और फिर जल्दी से अपनी साड़ी ठीक करने लगी। उसका चेहरा पूरा गुलाबी पड़ चुका था। रह रह कर अब उसे अनंत की छुअन महसूस हो रही थी। शाम का वक्त था जब रूहान फुल एक्साइटमेंट में अपने कमरे के सामने जाकर एक गहरी सांस लेता है और फिर बाहर से ही कमरे को अनलॉक करके अंदर आता है ताकि अनाही को सरप्राइज दे पाए। पर उसकी नज़र जैसे ही बेड पर सोई अनाही पर पड़ती है, उसके कदम धीमे पड़ जाते हैं। वो आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करते हुए धीरे धीरे चलकर बेड के पास जाता है। वो अनाही की इतनी गहरी नींद को ख़राब नहीं करना चाहता था। सोते वक्त अनाही बहुत मासूम सी बच्ची लग रही थी और उठने के बाद तो वो उसकी मैडम जी बन जाती है। रूहान उसके पास जाकर उसके सिरहाने बैठते हुए आहिस्ता से उसके बिखरे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए शिद्दत से उसे देखने लगा, जैसे पता नहीं उसे आगे अनाही को देखने का मौका मिलेगा भी या नहीं।
वहीं अनाही ने जैसे ही रूहान की स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस को अपने आसपास महसूस किया, उसके माथे पर बल पड़ने लगे और उसने अपनी नींद भरी आँखों को खोलकर सामने देखा। रूहान को अपने इतने करीब देखकर अनाही हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई।